हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रिशा, मन में सबको आप और भाई के दरमियान दूरियाँ और नफ़रत नज़र आती है, लेकिन जाने क्यों हमेशा मेरा दिल आप दोनों को लेकर यही कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, परफेक्ट फॉर ईच अदर। बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे दिल की बात ही सच निकले, और जिस तरह से आज पूरी दुनिया इन दोनों की नफ़रत और दूरियों को लेकर बातें बनाती है, बस बहुत जल्द वो दिन आए कि यही दुनिया इन दोनों की मोहब्बत की मिसाल भी दे। दूसरी तरफ आरना अपनी पढ़ाई की बात से उदास सी अपने कमरे में आ गई, और तभी उसका फ़ोन बजने लगा। आरना ने देखा कि उसके फ़ोन पर किसी अनजान प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर में आरना ने कॉल पिक की। आरना, हेलो, अननोन नंबर। हेलो, कैसी हो आरना? आरना, कौन बोल रहे हैं आप? अननोन नंबर, ओफ मेरी जान, मैं याद नहीं तुमको, इतनी जल्दी भूल गई मुझे, माय लव। आरना, नाराज़गी से, क्या बकवास है ये, और आखिर हो कौन तुम? अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी किस्मत, जो इतने दिन से अपने जज्बातों में लिपटे तुम्हें अपनी मोहब्बत के खत भेज रहा हूँ, रिमेम्बर योर डेस्टिनी। आरना, परेशान होकर, तो तुम हो कौन और आखिर मुझसे चाहते क्या हो? अरे, अभी तो बताया, तुम्हारी किस्मत, योर डेस्टिनी, और बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए मेरे पास, मेरे साथ, मेरी इन बाहों में होगी, और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालकर हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, और वो तुम्हारा सो कॉल्ड पति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आरना, गुस्से से, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी, और दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी मैं, समझे तुम? इतना कहकर आरना गुस्से से फ़ोन कट कर दिया और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ घुमाने लगी। आरना, अपना फ़ोन देखते हुए मन में, आखिर कौन है ये और चाहता क्या है मुझसे? मुझे जल्दी ही इसका पता लगाना होगा, लेकिन ये यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रात को डिनर करने के बाद रोज़ की तरह आरना रिदांश के लिए कॉफ़ी लेकर उसके स्टडी रूम में गई। कॉफ़ी को टेबल पर रखकर रोज़ से अलग वहीं खड़े होकर अपनी उंगलियों से खेलने लगी। रिदांश का ध्यान उसकी तरफ ना देखते हुए भी उसी पर था। इतने वक्त साथ रहकर आरना के बारे में वो इतना तो समझ चुका था कि जब भी वो नर्वस होती थी या उसे उससे कुछ कहना या पूछना होता था, तब अक्सर उसका यही रिएक्शन होता था, रिदांश ब्लैंक एक्सप्रेशन से, अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जो कहना चाहती हो वो कह दो। आरना, गहरी सांस लेकर, मुझे कल पापा से मिलने के लिए अपने घर जाना है, इसीलिए आप अपने गार्ड को कह दीजिएगा कि वो मुझे जाने से ना रोकें। रिदांश, खड़े होकर, और किस लिए और क्यों जाना है तुम्हें वहाँ? आरना, ये कैसा सवाल है, मेरे पापा हैं वहाँ और मिलना है मुझे उनसे। रिदांश, अपने हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले आरना के सामने आकर, पापा से या पापा की आड़ में किसी और से मिलना है? आरना, फ्रस्ट्रेशन से एक पल को अपनी आंखें बंद करके, मुझे वहाँ अपने पापा से मिलने जाना है, और रही बात राहुल की, तो वो मेरा भाई की तरह एक अच्छा दोस्त है। रिदांश, ओके, लेकिन फिर भी तुम वहाँ नहीं जा सकती। आरना, लेकिन क्यों नहीं जा सकती, मुझे अपने पापा से मिलना है। रिदांश, सख्त भाव से, क्योंकि अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, कोई उसके मरने की खबर नहीं आई जो तुम वहाँ जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। आरना, गुस्से से, मिस्टर अग्निहोत्री। रिदांश, ईविल मुस्कान के साथ, ओप्स, सिर्फ अपने बाप के मरने की बात सुनकर ही इतना बुरा लग गया मेरी वाइफी को। आरना, गुस्से और दुखी भाव से, बहुत पछताएंगे आप एक दिन अपने इन रवैयों के लिए, बहुत पछताएंगे। इतना कहकर आरना वहाँ से चली गई। आरना की बात सुनकर कुछ पल तक रिदांश के चेहरे के भाव गंभीरता में बदल गए, जिन्हें कुछ पल बाद ही वो हटाकर वापस से ब्लैंक एक्सप्रेशन का नकाब ओढ़ लेता है। अगले दिन संडे था और रिदांश ने करण और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट किया था। रिदांश ने समांथा के साथ ही बाकी सभी शेफों को रात के खाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अभी दोपहर का वक्त था और आरमा कल्पना जी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। इस बार रिदांश भी उसके साथ कमरे में गया। जितनी देर आरना कमरे में थी, रिदांश भी वहीं कुर्सी पर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने ही अपनी टांगें क्रॉस करके बैठा था और आरना के साथ अपनी माँ की बॉन्डिंग को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। कल्पना जी, तुम मेरी डॉली की तरह अच्छे अच्छे और नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर क्यों नहीं रहती? अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो मैं रिदु को बोलूंगी कि वो तुम्हें भी मेरी डॉली की तरह ही अच्छे और नए कपड़े लाकर दे देगा। आरना, क्योंकि मुझे ऐसे ही सादे कपड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं यही पहनती हूँ। कल्पना जी, लेकिन जिनकी शादी हो जाती है वो तो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनते हैं मेरी डॉली की तरह, तो फिर तुम भी पहनो ना। रिदांश की तरफ देखकर, रिदु, तुम अरु को अच्छे और नए कपड़े लाकर दोगे ना, बिल्कुल मेरी डॉली की तरह। रिदांश हल्की मुस्कान के साथ, जी माँ, मैं ले आऊँगा। आरना मन में, इस वक्त इनको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही राक्षस हैं जो लोगों को सिर्फ अपनी तीखी और पैनी नज़रों से ही मारने की क्षमता रखते हैं। कल्पना जी बच्चों की तरह खुश होकर, देखा आरु, मैंने बोला था ना कि रिदु ले आएगा। आरना बस हल्का सा मुस्कुराकर रह जाती है। अच्छा अरु, तुम पूरा टाइम मेरे साथ ही क्यों नहीं रहते मेरे कमरे में? आरना सोचते हुए, क्योंकि रिदांश आरना का जवाब पूरा करते हुए, क्योंकि माँ, जैसे ये इस वक्त आपका ख्याल रखती है, ऐसे ही बाकी का टाइम ये मेरे साथ रहकर मेरा ख्याल रखती है। ओह अच्छा अच्छा, हम बाहर घूमने कब जाएंगे? ओ उदास होकर, मैं कब से बाहर भी नहीं गई हूँ। रिदांश कल्पना जी के पास जाकर उनके माथे को चूमकर, बस आप जल्दी से अच्छी हो जाएं, फिर आप जहाँ भी कहेंगी मैं आपको हर जगह लेकर जाऊँगा। कल्पना जी अपना हाथ आगे करके, पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। रिदांश कल्पना जी का हाथ थामकर, बिल्कुल पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। आरना को कहीं न कहीं कल्पना जी के साथ रिदांश का ये नर्म बर्ताव देखकर अच्छा महसूस हो रहा था, और उसे अच्छा लग रहा था कि चाहे थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन कहीं कोई तो ऐसा है जिसके साथ रिदांश अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन का नकाब उतारकर एक आम इंसान की तरह बिहेव करता है। कुछ ही देर में कल्पना जी को खाना और दवाई देकर उनके सोने के बाद दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। कमरे से बाहर आकर आरना रिदांश को टोकती है। आरना, मिस्टर अग्निहोत्री। रिदांश रुककर आरना की तरफ मुड़कर, व्हाट? आरना, आपको नहीं लगता कि आंटी जी को प्यार और केयर के साथ साथ ही बाहर की ताज़ी हवा और माहौल की भी सख्त ज़रूरत है? अगर बाहर नहीं तो कम से कम उन्हें घर के गार्डन में ही उन्हें रोज़ थोड़ी देर के लिए घुमाना फिराना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनकी हेल्थ और रिकवरी के लिए अच्छा रहेगा। और रिदांश आरना को बीच में ही टोकते हुए, तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं, आई रियली डोंट केयर। और रही मेरी माँ की बात, तो तुमसे कहीं गुना ज्यादा फिक्र है मुझे उनकी, और मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से उनका अच्छा और बुरा पता है, इसीलिए अपनी ये फिजूल और फालतू की एडवाइस अपने पास ही संभाल के रखो। इतना कहकर रिदांश वहाँ से चला गया और आरना कुड़ते हुए उसे जाता हुआ देख रही थी। आरना मन में, ये इंसान सच में प्यार और शांति से बात करने लायक ही नहीं है। शाम हो चली थी और करण और उसकी फैमिली भी आने ही वाले थे। तभी समांथा आरना को कमरे में आकर एक पैकेट देती है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर की एक डार्क ब्लू कलर की साड़ी और उसकी मैचिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। कुछ पल बाद रिदांश भी कमरे में आता है और उस पैकेट को टेबल पर रखता है और आरना को यूं ही वहीं सोफे पर बैठा देखता है। रिदांश तंज भरे लहजे में, तुम्हारे तैयार होने के लिए कोई मुहूर्त निकलने वाला है या फिर आसमान से उतरकर कोई स्पेशल इन्विटेशन आने वाला है?
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बल्कि मैं तो इसीलिए आराम से बैठी हूँ क्योंकि ना तो आज कोई मेरा मायके वाला आ रहा है और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार। इसीलिए मुझे अपना फिजूल वक्त खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मेरा मूड बिगाड़ने की सोचना भी मत। अगर करण या उसकी फैमिली के सामने तुमने कोई भी सीन क्रिएट करने की कोशिश भी की तो तुम सोच भी नहीं सकती, क्योंकि पिछली बार तो कुछ भी नहीं था, जो इस बार तुम्हारा बाप तुम्हारी बदतमीजी की कीमत चुकाएगा। आरना रिदांश की बात सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेती है। वैसे तो आरना उन लोगों और खास करके करण के सामने आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन रिदांश अपनी बहन के ससुराल वालों के सामने उन दोनों को एक परफेक्ट कपल की तरह ही शो करना चाहता था, इसीलिए मजबूरन आरना को उन लोगों से मिलने के लिए राजी होना पड़ता है। और वो झुंझलाकर अपने बैग से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है कि एक बार फिर रिदांश उसे टोकता है। रिदांश टेबल पर रखे पैकेट की तरफ इशारा करके, टेक इट। आरना हल्की हैरानी से अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, ये मेरे लिए है? रिदांश अपनी बाजुओं को अपने सीने पर बांधते हुए, यहाँ कोई और नजर आ रहा है तुम्हें, या फिर कभी तुमने मुझे साड़ी पहनते देखा है जो अपने लिए ऑर्डर की हूँ मैंने? आरना कुड़ कर वो पैकेट उठाते हुए, अगर यही बात आप एक बार तरीके से और बिना ताने मारे कह देते तो आपकी जुबान मीठी नहीं हो जाती। इतना कहकर आरना बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और रिदांश की उसके चले जाने के बाद वहाँ से नीचे चला आता है। कुछ ही देर में करण और उसकी फैमिली भी वहाँ आ जाते हैं और सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही देर में आरना भी सबके बीच आ जाती है और सबको ग्रीट करने के बाद रिदांश के पास आकर बैठ जाती है। रिदांश कुछ पल तक उसे एकटक देखता है और अगले ही पल ब्लैंक एक्सप्रेशन और हमेशा की तरह अपना एटीट्यूड लिए हुए बाकी लोगों से बातों में बिजी हो जाता है। यहाँ एक और इंसान था जिसकी पैनी और गंदी नजरें बार बार आरना पर आकर टिक जाती थीं और जिसे आरना भी महसूस करके असहज हो रही थी। कुछ ही देर में सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और आरना समांथा और बाकी शेफ की मदद से सबको खाना परोसती है। रिदांश सबको परोसने के बाद आरना को भी अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहता है। जैसे तैसे खुद पर करण की नजरें बर्दाश्त करते हुए आरना कुछ लुक में खाकर चाय के बहाने वहाँ से उठकर किचन में आ जाती है। कुछ देर बाद बाकी सब लोग भी डाइनिंग एरिया से उठकर लिविंग एरिया में वापस आ जाते हैं। आरना अभी किचन में चाय ही बना रही थी कि उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने की आहट होती है और वो जल्दी से पीछे की तरफ पलटती है और अपने सामने करण को देखकर एक पल को बुरी तरह घबरा जाती है।